नमस्कार ई प्रसारण के श्रोताओं, आपकी सेवा में एक बार फिर अरविंद कंसल हाजिर है। पुणे से पधारे वैद्य दिलीप गाडगिल जी के एक नए प्रोग्राम के साथ। वैद्य गाडगिल जी ने आयुर्वेद में पीएचडी और संस्कृत में एमफिल तक अध्ययन किया है। पिछले 33 वर्षों से आप आयुर्वेद के क्षेत्र में अध्यापन, रिसर्च और चिकित्सा कर रहे हैं। वैद्य जी नमस्कार।
नमस्कार।
बहुत अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है आप दोबारा एक बार कुपटीनो आए। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे एलर्जीज के विषय में कि एलर्जीज क्या होती हैं, आयुर्वेद में इनके बारे में क्या विचार है। तो आइए क्यों ना हम पहले बात करें कि एलर्जीज की डेफिनेशन क्या है।
अच्छा, थोड़ा सा उसमें ऐसा है, एलर्जी शब्द तो आधुनिक विज्ञान का है
जी।
आयुर्वेद में जो विषय आता है वो सात्म्य असात्म्य इस नाम से आता है। सात्म्यम नाम यद आत्मनि उपशेते, इस प्रकार की सात्म्य की व्याख्या की गई है। तो हर एक व्यक्ति की प्रकृति, उसका रहन सहन, उसका बचपन से क्या हुआ, जो कुछ लालन पालन वगैरह इस प्रकार का है, वो एक अलग अलग ढंग का होता है। और वैसे भारत बड़ा महान देश है, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न देश है, विभिन्न भाषाएं हैं, अपनी अपनी अलग अलग तरीके हैं,
खाना पीना अलग है जी।
तो वो बताते हैं कि जैसे पंजाब में गहू सात्म्य है, कि जो भी पंजाबी लोग, पंजाब में रहने वाले लोग होंगे, उनके लिए वो जन्म से पीढ़ियों से वो सात्म्य है,
वही खाते पीते हैं, वही अपने बच्चों को खिलाते हैं।
उसी प्रकार कोंकण में जाएंगे आप, गोवा में जाएंगे या बंगाल में जाएंगे, तो चावल है या फिर मछली है, वो उनके लिए सात्म्य है। और महाराष्ट्र में ये देखेंगे, देश जिसको बोलते हैं हम, सह्याद्री का दूसरा हिस्सा
जी,
तो वहां भाकरी, ज्वारी की रोटी जो बोलते हैं, वो सात्म्य इस प्रकार की है। तो ये सारा देश सात्म्य का मामला है। वास्तव में सात्म्य के कई प्रकार बताए गए हैं, और जिस चीज से उसको फायदा मिलता है, नुकसान नहीं होता है या उसकी तकलीफ नहीं होती है, आत्मनि उपशेत है इस प्रकार का, वो सात्म्य कहलाता है। और उसके विपरीत जो है वो असात्म्य है। यानी कि कुछ चीजें खाने पर हमें तकलीफ होने लगी, कि फुंसियां उभर आई या रैश जैसा निर्माण हो गया, या कुछ सांस फूलने लगी वगैरह, इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, या त्वचा विकार कुछ निर्माण हो जाते हैं इस प्रकार से, सर्दी जुकाम हो जाती है इस प्रकार से। तो ये एक तरीके से किसी खास पदार्थ को लेकर, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, चाहे वातावरण की कुछ चीज हो, शरीर में एक बदलाव इस प्रकार का आ जाता है और कुछ भुगतना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो ये उस व्यक्ति की खासियत हो जाती है कि जिसके लिए वो असात्म्य है, तो वो अगर वो सेवन करता है तो उसको उसकी तकलीफ होती है। तो यही कंसेप्ट मॉडर्न साइंस में भी है, कन्वेंशनल मेडिसिन में है, कि किसी को किसी ड्रग की एलर्जी होती है, पेनिसिलिन की एलर्जी है, सल्फा ड्रग की एलर्जी है, इस प्रकार के मरीज दिखे जाते हैं, या फिर धूलिकण है, तो रजक कण जिसको बोलते हैं,
डस्ट पार्टिकल्स,
तो उसको उसकी किसी को एलर्जी होती है, तुरंत उसको दमा हो जाता है, एस्मा हो जाता है इस प्रकार से, या फिर कई लोगों को रैश शरीर पर निकल आता है, एलर्जिक अर्टिकेरिया इस प्रकार से कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि किसी व्यक्ति को ये सभी व्यक्ति में कॉमन नहीं रहती, इसलिए ये हर व्यक्ति की अलग अलग खासियत इस प्रकार की है, और इसको हम असात्म्य कहते हैं। आयुर्वेद में जो कहा गया है शब्द, वो असात्म्य इस प्रकार का शब्द है, यद आत्मनि न उपशेते। सात्म्य जो है वो आत्मनि उपशेते इस प्रकार का है, और जो सात्म्य नहीं होता इस प्रकार से, वो तकलीफ करता है, वो असात्म्य इस प्रकार से कहला जाता है।
इसका डायग्नोसिस फिर कैसे होता है?
जनरली कैसा होता है कि ये एब्रप्टली होने वाली रिएक्शन इस प्रकार की है, कुछ ध्यान में नहीं है, अचानक कुछ तकलीफ होना आरंभ हो गया, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पूछ लेता है कि पहले कुछ इस प्रकार की बीमारी थी क्या, कभी ऐसा हुआ था? वो व्यक्ति बोलेगा, नहीं तो ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, आज सुबह मैं उठा और देखा तो पूरे शरीर पर सूजन जैसे आ गई है, रेडनेस आ गया है इस प्रकार से। तो फिर वो चाहे पूछना शुरू कर गया, कल रात को क्या खाया था, या किसी दूसरे चीज के संपर्क में आए थे, इस प्रकार का कुछ हो गया क्या वगैरह वगैरह, तो उससे पता चल जाता है कि ये एलर्जिक है। ये जो रिएक्शन ऐसी तुरंत हो जाती है जिसमें एक घटनाक्रम इस प्रकार का, बहुत सारे दिनों से बीमारियां चल रही है, कुछ कुछ लक्षण होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। एलर्जी झट से होने वाली बीमारी है,
अचानक
होती है। और कभी कभी मालूम होता है कि ये पहले मैंने सेवन किया था और उसके मुझे रिएक्शन हो गई थी, लेकिन कभी कभी मालूम नहीं होता। नई चीज कोई सामने आती है, हम टेस्ट करने जाते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं उसकी एलर्जी हो गई इस प्रकार से, और फिर उसके तकलीफ इस प्रकार से हो गई। तो ये ज्यादातर रिएक्शनरी होता है, लेकिन एक बार मालूम पड़ने पर, अगर मालूम होने पर भी कोई अगर उस व्यक्ति का सेवन करता है तो वो खुद ही जिम्मेदार है।
बिल्कुल,
उसको मालूम है कि ये मुझे चीज भाती नहीं है और इससे मुझे तकलीफ होती है, तो नहीं लेना है इस प्रकार से।
और हो सकता है शुरू में उसका, जैसे आपने कहा प्रतिक्रिया, उसकी शुरू में जो रिएक्शन है वो कम हो, और दोबारा तीन बार दोबारा सेवन करने से या कई बार सेवन करने से वो और भी ज्यादा उभर कर आए, उसका एकदम इमीडिएट रिएक्शन।
कभी कभी उदाहरण दिखाई देते हैं इस प्रकार के। मैं एक अजीब केस बताता हूँ, मेरे यहाँ जो घटना हुई है इस प्रकार से। एक ऐसे ही कोई बीएमएस पढ़ने वाली छात्रा थी, तो वो कभी कभी क्लिनिक में आती थी, हर रोज आती थी, ऐसा नियमित रूप से छात्रा नहीं थी। तो उसने एक दिन बोला कि मेरे माँ को शीत पित्त है, एलर्जिक अर्टिकेरिया जिस प्रकार से बोलते हैं उस प्रकार से है, और आप दवा दे दीजिए, अभी तकलीफ हो रही है ज्यादा। तो मैंने कहा कि उसको लेके आओ, मैं एक बार परीक्षा करता हूं और फिर दवा देंगे, वो सबसे बेहतर तरीका है। बोली नहीं आज तो नहीं आ पाएगी, लेकिन तकलीफ बहुत है, तो ये लक्षण है, तो आप कृपा करके कुछ दवा दे दो। तो मैंने ठीक है, बहस में आकर मैंने दवा दे दी उसको। दूसरे दिन उसने बताया कि थोड़ा ठीक है तो मैं दवा कंटिन्यू करती हूँ, बाद में आपको दिखाने में आएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर अच्छा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वो तीन चार दिन आई नहीं, और फिर ऐसा हुआ कि छठे दिन वापस आ गई। मैंने कहा बीच में क्या हुआ, तो बोली कि दूसरे दिन तो अच्छा था इसलिए दवा कंटिन्यू करी, दो दिन के बाद फिर से उभर आया और ज्यादा तकलीफ हुई। तो हम नजदीक की फैमिली डॉक्टर के पास गए, एलोपैथी वाला था, उसने एविल की गोली दे दी और फिर उस दिन थोड़ा शांत हो गया। दूसरे दिन फिर से उभरा, तो उसने एविल का इंजेक्टेबल दिया और वो देने के बाद वो और बढ़ गया। तो डॉक्टर ने ही आशंका व्यक्त की कि कदाचित ये एविल का भी रिएक्शन होगी इस प्रकार से। तो फिर वो बोले तू फिर इससे बेहतर है आयुर्वेद के पास जाए, तो फिर से मेरे पास आई। और इस समय भी मम्मी को, माता को लाया ही नहीं था साथ में, वो अकेली आई थी।
अच्छा।
मैंने कहा ये सब अजीब मामला चल रहा है, तुम ऐसा करो कि उसको लेके आओ तभी मैं दवा दूंगा, और बाकी पूरी जान पहचान लेंगे, क्या खाया है क्या नहीं है सब हिस्ट्री ले लेंगे। फिर भी उसने जिक्र किया नहीं, आज के दिन तुम उसे तुम दवा दे दो और मैं कल बिल्कुल लेके आऊंगी इस प्रकार से। फिर दूसरे दिन उसका फोन आया कि माँ आने की कंडीशन में बिल्कुल है ही नहीं, तो कृपा करके आप ही घर पधारे और उसको देखे। तो मैं घर पहुंचा तो पूरा बदन सूज गया था, ये सूजन थी पूरे बदन पे, और ऐसे लाल बड़े बड़े धब्बे थे। एलर्जी का अर्टिकेरिया का मैंने इतना गंभीर पेशेंट नहीं देखा था, पहली बार मैंने ये महसूस किया। और वो पूरे केवल अंगुली, हाथ के अंगुली और पांव के अंगुली के तले वो रख के, कोई भी हिस्सा अगर शरीर का टच करता है किसी पार्ट को तो बहुत सारी खुजली और जलन होती थी। तो ये काफी गंभीर अवस्था थी। तो मैंने फिर तहकीकात की कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, शुरुआत कब से हुई है वगैरह वगैरह। तो फिर पता चला कि वो बहुत सारे आपत्य बहुत सारे दिनों से कर रही है। दही खा रही थी, अचार खा रही थी, तली हुई चीजें बहुत खा रही थी, नॉनवेज खा रही थी, स्पाइसी था वो भी। और ये बहुत वर्षों से चल रहा था। बीच बीच में कभी कभी तकलीफ होती थी या ऐसे ही एंटी एलर्जी कुछ लेती थी, तुरंत उसके लिए शांति हो जाती थी कुछ देर के लिए। लेकिन किसी ने ये ढूंढने की कोशिश ही नहीं की थी कि क्या खा रही है,
कारण क्या
रही है इस प्रकार से। तो उस गंभीर अवस्था को देखकर मैंने कहा कि ठीक है, अभी तो ये इतने आसानी से मिटेगा नहीं। और मैंने उस समय रक्तमोक्षण किया, पहला जो किया तो वो रक्तमोक्षण किया। फिर दूसरे दिन वमन और विरेचन ये भी करवाया। फिर चार दिन उसको लगे उससे बाहर आने के लिए, निकलने के लिए, और काफी तकलीफ सहनी पड़ी, फिर भी बच गई और बाहर आई उसमें से। लेकिन ये काफी कठिन परिस्थिति होती है, इस प्रकार की अगर रिएक्शन हो जाती है, इतनी बड़ी पैमाने पर हो जाती है, तो इसमें अगर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस प्रकार का हो सकता है। और इसलिए आयुर्वेद इसमें एक्चुअली दो तरीके कारण मानता है, और जो कि कन्वेंशनल मेडिसिन में इसके बारे में विचार नहीं है, वो हम सब बोलते हैं कि उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु, इस प्रकार से दो कारण बताए गए हैं। तो उत्पादक हेतु, ये संस्कृत शब्द है मूल रूप से, और उत्पादक का मतलब होता है जो उत्पन्न करने वाला है, और व्यंजक का शब्द का अर्थ कि जो व्यक्त करने वाला है। सो क्रिएटिंग फैक्टर एंड एक्सप्लोरिंग फैक्टर, अगर अंग्रेजी में कॉजेटिव करेंगे, कॉजेटिव फैक्टर और एक्सप्लोरिंग फैक्टर एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि मानो कि दो लोगों में झगड़ा हो गया, उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं, किसी ने पूछा अरे क्या कारण हुआ, अरे उसने बुलाया था 5 बजे स्टेशन पर मिलेंगे और यहां पे जाएंगे, वो गधा आया ही नहीं, 5:30 बज गए, 6 बज गए, तो उसको बहुत गुस्सा हो गया और फिर झगड़ा हो गया उन दोनों में, और बहुत झगड़ा हुआ, बड़ा झगड़ा हुआ, और वो बोल रहे हैं कि कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं वगैरह वगैरह। इस प्रकार से कोई दूसरा व्यक्ति बोला गया अरे ऐसी क्या चीज है, आधा घंटा एक घंटा लेट हो गया, ठीक है ऐसे ऐसे ही, उसमें इतना बड़ा झगड़ा होने की क्या वजह है उसमें। तो पूछते जाएंगे तो नहीं, 1 बरस पहले ऐसा हुआ था, वो मैंने इस प्रकार से कुछ बोला था, वो इस प्रकार से बोला वगैरह वगैरह इस प्रकार से, फिर उसके बाद में 4-5 महीने के बाद ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, तो उसमें कारण परंपरा चली आ रही है और वो मूल है, जड़ है सभी का। और ये जो एक्सप्रेसिंग फैक्टर है वो अंत में हुआ, और ये सब जो संचित हुआ था आज तक वैरभाव, वो व्यक्त हो गया इस प्रकार से। उसी प्रकार से छोटे छोटे कारण होते जाते हैं, ऐसा है, और उससे कुछ दोषों का संचय होता रहता है शरीर में, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं रहता कि उसके जरिए कुछ लक्षण निर्माण हो जाए, रोग अभिव्यक्ति हो जाए इस प्रकार से। और लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि ठीक है कल थोड़ा सा खाना ज्यादा हो गया था, अजीर्ण जैसा था, ठीक है आज थोड़ा कम खाया और अभी तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा इस प्रकार से, या एक दिन बाहर गए स्पाइसी खाना खा लिया, थोड़ी जलन हुई लेकिन बाद में कुछ ठीक है अभी तो चल रहा है इस प्रकार से। तो इस तरीके से वो कारण होते जाते हैं और एक प्रकार का संचय दोषों का शरीर में होता रहता है।
तो ऐसा नहीं कि एक बारी हुआ और वो तकलीफ हट गई तो उसके बाद सब कुछ साफ हो गया, ये नहीं है। आपका कहना है कि उसमें जो संचय होता रहता है, तकलीफ भले ही उस समय दूर हो जाए पर उस समय जो दोषों का संचय हुआ है वो फिर समय के बाद बढ़ता ही जाता है संचय।
इसमें विरुद्धान्न नाम की एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में, मैंने शायद आहार के बारे में जब
जी हाँ पिछली बार बात की थी हमने,
बताया था, तो उसमें विरुद्धान्न में कंसेप्ट ऐसी है कि दोषों का संचय होता है लेकिन न निर्हरति कायता, उसको बाहर नहीं निकाला जाता। या फिर अभी एलोपैथी में भी ऐसा होता है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र जो विकसित हुआ है, मानो कि आपको अजीर्ण हो गया और पचन नहीं कर पा रहा है शरीर, अग्नि उसका जो है वो, तो उसको फेंकने की कोशिश करता है कि उल्टी हो जाती है और जो कुछ जमा हुआ है निकल जाएगा। अगर निकल जाता है तो कोई अच्छी चीज है, हम समझते आ रहे हैं उल्टी हो रही है उसको रोकना चाहिए, तो एंटी एमेटिक ड्रग दे लेते हैं, तो उससे उल्टी का आवेग बंद हो जाता है, लेकिन दोषों का पचन तो नहीं हुआ, अजीर्ण जो हुआ था उसका पचन नहीं हुआ, उसके लंघन करना चाहिए उसके लिए, वो भी नहीं किया गया इस प्रकार से, तो वो संचित बंद कर रहता है। एक मैं दूसरे एक अजीब केस बताऊं इसके बारे में, कि ऐसे एक एलर्जिक अर्टिकेरिया का मरीज हमारा छात्र था, BAMS करने वाला था, और हर रोज उसको एविल या इस प्रकार की एंटी एलर्जिक गोली लेनी पड़ती थी क्योंकि पूरे बदन में फैल जाता नहीं तो, और ऐसा 5 बरस सिलसिला चल रहा था, हर रोज एंटी एलर्जिक लेनी ही है इस प्रकार से। आयुर्वेद में आया फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे बीमारी है तो तुम मेरी ट्रीटमेंट करो, मैं तो उस समय 3rd ईयर में था, मैं पूरा पास भी नहीं हुआ था।
अच्छा।
लेकिन हमारी हॉस्टल में रहता था तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो बहुत सारे वैद्यों के पास जाता था तो मालूम था कि क्या प्रकार करते हैं, इस प्रकार के ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो मैंने पूछताछ की तो पता चला कि उसको पहले एसिडिटी थी 5 बरस पहले, और वो बहुत वर्षों से सिलसिला चल रहा था। और फिर एंटासिड खाता था, एसिडिटी है तो उसके विरुद्ध जो है वो एंटासिड है
उस समय राहत के लिए।
हाँ, राहत के लिए। तो कभी कभी वो पहले सरदर्द होता था, उल्टी हो जाती थी, खट्टी या कड़वी इस प्रकार की, और वो होने के बाद शांति होती थी सरदर्द की। फिर जैसे उसने एंटासिड खाना शुरू कर दिया तो उसकी चर्दी वगैरह सब बंद हो गई, ये उल्टी होना जो है बंद हो गया। तो कुछ महीनों के बाद उसने वो छोड़ दी, एंटासिड की जरूरत नहीं है। कि वो भी इस प्रकार से सारा आपत्य सेवन कर रहा था, नॉन वेजिटेरियन था बेसिकली, और ये दही और स्पाइसी चीजें सब खाता था इस प्रकार से। तो पित्त तो बनना चालू ही था शरीर में, वो सिर्फ एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, उल्टी हो रही थी वो बंद हो गया एंटासिड से। और फिर उसने अपना मार्ग बदला, हम जिसको शाखा कोष्ठ गति इस प्रकार से कहते, एक टेक्निकल टर्म है। तो कोष्ठ से उसने शाखा गति पकड़ ली और ये स्किन के ऊपर एलर्जी अकर्टिया के ऊपर रूप में वो शुरू हो गया,
उभर के
आ गए। तो अभी इसका निदान एलर्जिक अर्टिकेरिया हो गया एलोपैथी में। तो उन्होंने एंटी एलर्जिक दवा शुरू कर दी और रोज ये इस प्रकार का खाना खाता है और इसी प्रकार से एंटी एलर्जिक दवा लेता है, तो उसको सप्रेस कर रहा है। 5 बरस सिलसिला चालू है इस प्रकार से। मैंने कहा ये तो सब अजीब काम कर रहे हो तुम, एक तो पहले ही परहेज करना चाहिए था अम्लपित्त जब था उस समय में, और अगर उल्टी होती थी, उल्टी से राहत मिलती तो वही बेहतर ऑप्शन था। ये आपने संचय करके रखा है और उसका आउटलेट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो परिणाम दिखाएगा ही इस प्रकार से। तो मैंने कोलटकर जी के एक केस के बारे में सुना था, तो मैंने उसको सूचकर से एक साथ थोड़ा यष्टि मधु इस प्रकार का दे दिया। यष्टि मधु मुलेठी जो है, तो ये एक वमनोपगत द्रव्य है, या वामन बड़ी मात्रा में देते हैं तो उससे चर्दी होती है, तो हमारे हिसाब में वो दोष को फिर से कोष्ठ में लेके आती है, ऐसा है थोड़ा सा। तो फिर हुआ ऐसे कि जैसे मैंने वो आरंभ किया तो बोलने लगे कि मुझे फिर से जलन होने लगी सीने में। मैंने ठीक है, हम राइट ट्रैक पर है। तो मैंने उसको फिर वमन दे दिया, विरेचन करवाया, रक्तमोक्षण करवाया, और वो दोनों से मुक्त हो गया। परहेज तो पर करना ही था उसको, वो मैंने पहले ही बोला था कि आप कौन सी भी दवा करो, भीतर वाली दवा हो या पंचकर्म हो, लेकिन परहेज तो करना ही है। ये हुआ है इसी कारण से हुआ है। तो होता है क्या कि ये उत्पादक हेतु है जिसको हम पहले बोल रहे थे इस प्रकार, और व्यंजक हेतु जो है वो एक्सप्रेसिंग फैक्टर है कि इस प्रकार से कफ का संचय शरीर में है और अभी धूलिकण का संपर्क हो गया तो अचानक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा या स्नीजिंग इस प्रकार से शुरू होता है, ऐसे मरीज दिखाई देते हैं। तो वो बोलेंगे कि आज तक तो कुछ नहीं था, थोड़ी भी सिंक में नहीं आती थी इस प्रकार से, आज क्या हमने घर साफ करने का सोच लिया और जैसे ही झाड़ू मारना आरंभ किया तो ये बस ये सब काम छोड़ना पड़ा और तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा इस प्रकार से। तो उसमें हम ऐसा बोलते हैं कि ये संचय पहले से है और उसके लिए कारण फ्रीज का पानी से लेकर केला खाया है, दही खाया है, कुछ भी कारण हो सकता है कफ का संचय होने के कारण होने के लिए, और तब उसको कुछ एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो शायद इतना बलवान नहीं था कि उसी समय कुछ लक्षण दिखा दे इस प्रकार से, और संचय होता रहा और फिर एक ट्रिगरिंग फैक्टर ऐसा मिल गया तो धूलिकण का संपर्क आ गया तो ट्रिगर ऑफ हो गया और फिर ये सांस की तकलीफ है इस प्रकार से शुरुआत हो गई इस प्रकार से। तो ये एक अहम डिफरेंस है कन्वेंशनल मेडिसिन में और आयुर्वेद में कि वहां एक्सप्रेसिंग फैक्टर को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, वो महत्व है उसका कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तुरंत दिखाने वाला वही हेतु है, लेकिन वही सिर्फ हेतु है ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने उन दो दोस्तों के बारे में कहा कि एक्सप्रेसिंग फैक्टर क्या देरी से आया, इतना ही है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हुई है
उनकी हिस्ट्री,
और फिर हाँ उस दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति रोष है और कभी विस्फोट होने वाला था तो इस बहाने में हो गया, ये केवल बहाना बन गया,
ये कारण बना,
कारण बन गया इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में जो उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु का जो मामला है वो भली भांति समझ लेना चाहिए। आयुर्वेद में वैसे ये सिंपल है कि किस प्रकार के कारणों से किस प्रकार के दोषों का प्रकोप होता है। मैंने विरुद्धार की बात कही थी, उत्क्लेश दोषान न हरे द्रव्यं यत्तत् समासता विरुद्धंतति धातूना प्रत्यनीकतया स्थितम्, इस प्रकार की व्याख्या है। तो दोषों का उत्क्लेश करता है लेकिन बाहर नहीं निकालता। अगर दोषों का उत्क्लेश हो गया और उसको निकाल दिया बाहर तो एक अलग चीज है, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती,
संचय नहीं होगा,
संचय नहीं होता। लेकिन फिलहाल ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के नाम से ये बहुत चक्कर चल रहा है कि थोड़ी भी उल्टी होने की आशंका है या उल्टी हो रही है तो तुरंत उसको रोकने के लिए दवा दे देंगे। मानो पतले दस्त होने शुरू हुए हैं तो उसमें भी उसको तुरंत रोकने का आयुर्वेद का संबंध नहीं है। हम पहले पाचन की अपेक्षा करते हैं, लंघन करते हैं, कुछ खाना पीना नहीं है, केवल गर्म पानी पीना है या ज्यादा से ज्यादा चावल की गंजी लेना है तो दोषों का पचन हो जाएगा तो अपने आप दस्त बंद हो जाएंगे। लेकिन ये विचार ही नहीं रहा अभी, तुरंत कुछ लोमोटिल वगैरह इस प्रकार की दवा दे देंगे कि वो बंद हो जाएगा, पतले दस्त बंद हो जाएगा। मरीज को लगेगा क्या अच्छी दवा है, अभी मैं ठीक हो गया, इस प्रकार से फिर से खाना आरंभ हो जाएगा। एक शरीर की परिसीमा रहती है जब तक वो सहन करेगा, उसके आगे चला गया तो शरीर की पहली प्रतिक्रिया होती है कि जिसका पचन नहीं है उसको बाहर निकाल दो, शरीर में रखना मत उसको, इस प्रकार से। तो मैंने मेरी किताब में मैंने लिखा है मदर नेचर, ये निसर्ग एक या प्रकृति हमारी माँ जैसी है। और माँ कैसे करती है कि शुरू में बताती है कि बेटा ये देखो ये अच्छा नहीं है तुम्हारे, अब इसके आगे मत खाओ, ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तो मत छो, इस प्रकार से। फिर भी बेटा जिक्र करता रहता है, नहीं नहीं मुझे खाना है, हट करता है, नहीं मुझे चाहिए ही, इस प्रकार से वगैरह वगैरह। तो थोड़ा डटाती है, देखो ऐसा करोगे तो इस प्रकार पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मत खाओ। वो भी नहीं अगर मान लिया तो वास्तव में हो जाता है इस प्रकार का, दर्द हो गया या उल्टी हो गई वगैरह, इस प्रकार से कुछ हो गया इस प्रकार से। तो तब तक तो जग जाना चाहिए कि जहां माँ बोल रही थी बराबर था, अभी मैं भुगत रहा हूं इस चीज को इस प्रकार से, तो इसके आगे तो नहीं करना है। फिर भी नहीं मानते हैं, अच्छा उल्टी हो गई क्या, तो फिर उसको सप्रेस कैसे करेंगे, देखेंगे उल्टी बंद कर देंगे, दवा लेंगे उल्टी बंद हो जाएगी। एसिडिटी हो रही है, एंटीसिड की दवा ले लेंगे, फिर सरदर्द बंद हो जाएगा और एसिडिटी भी चली जाएगी। अभी तो इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि शरीर अब सहन करने के क्षेत्र में नहीं है, ना ही उसको बाहर निकाल सकता है। तो फिर एक रिएक्शन बन जाती है शरीर की कि कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से वो कुछ लक्षण पैदा करेंगे, चाहे सांस फूल जाएगी, चाहे इस प्रकार के एलर्जी करटिक क्रिया का जैसे रैश हो जाएगा और कुछ रिएक्शंस इस प्रकार से होगी। और फिर उस समय में भी अगर हम फिर भी एंटी एलर्जिक का ही इस्तेमाल करते रहेंगे और ऐसा ही चालू रहेगा तो ये फेटल भी हो सकता है आगे चलकर।
अच्छा, फेटल भी हो सकता है।
हाँ, फेटल भी हो सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हित है, जो सात्म्य है मेरे लिए, वही सेवन करना है, ऐसा बताते हैं। और ऐसा भी होता है कि अहितकारक गोष्ट भी हमें सात्म्य हो जाती। जैसे कि आदमी जब पहली बार तमाकू खाता है तो जोर से झटका लगता है उसको, मैंने तो अभी अनुभव नहीं किया है
मेरा भी नहीं है
अच्छी बात है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि वो अच्छा अनुभव नहीं है बिल्कुल,
जैसे आपने पहली बार सिगरेट पी है तो एकदम खांसी सी होने लगी।
हाँ, खांसी आ जाती है इस प्रकार से। फिर बाद में वो तकलीफ इस प्रकार के नहीं होती और मजा आता है, ऐसा लोग बोलते हैं।
फिर सेवन की आदत हो जाती है, फिर आदत से फिर लत बन जाती है।
तो फिर हम बोलते हैं ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती सिगरेट से या तंबाकू से, क्या लेने में क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ होती है तो सोचेंगे, तकलीफ नहीं होती है तो क्यों बंद कर दूं, इस प्रकार से। तो इनका कहना है कि अहितकारक चीज अगर आपके लिए साथ में भी हो जाती है, जैसा कि आपको लगता है कि उसके कुछ तकलीफ हो नहीं रही इस प्रकार से, तो भी उसका त्याग करना है, क्रम से उसको छोड़ना ही है। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि दूध जैसी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या करूं, दूध लेने से गैस बनती है बहुत, या दूध लेने से पतले दस्त होते हैं, कफ होता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के कुछ मरीज दिखाई देते हैं, तो मुझे दूध बिल्कुल सूट नहीं करता, बच्चों में दूध की एलर्जी पाई जाती है, नन्हे मुन्ने बच्चों में दूध की एलर्जी पाई जाती है। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा गहराई में जाकर देखना है कि ये सचमुच क्या चीज है, वो जो दूध मिल रहा है वो सही दूध है या नहीं है।
अच्छा, दूध की क्वालिटी पर?
हाँ, क्वालिटी पर के ऊपर निर्भर है। जैसे कि ये काफी लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन पुराने जमाने की जो गाय थी, देसी गाय जिसको कहेंगे, और दूध एक नाशवंत इस प्रकार की चीज है, जिसे अपने आप एक दिन ज्यादा से ज्यादा डेढ़ दिन तक अच्छा रहेगा, उसके बाद तो वो खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। और जब तक हम नेचुरली जी रहे थे, जो निसर्ग में उपलब्ध है उसी की सहायता से जो करना है वो कर रहे थे, तो हमारी पद्धति क्या थी कि दूध लाया, धारोष्ण अगर दूध है वैसे ही पी लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार ठंडा हो गया बाहर, तो फिर उसको उबालना है, उबालकर उसमें जो मलाई ऊपर आएगी वो दूर करनी है, और फिर उसके ऊपर प्रोसेस करनी है, उसका दही बनाना है, अच्छा मक्खन उसमें से बनाना है, घी करना बनाना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब चाहे आप मक्खन हो या छाछ हो या घी हो, उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो दूध रहेगा वो दो दिन में दो तीन बार उबालेंगे, हर समय उसमें से मलाई निकल आएगी, और जो शेष दूध है उसका हम पीने के लिए चाय में डालने के वगैरह इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। ये पुराना तरीका था। जैसे ही रेफ्रिजरेटर का जमाना शुरू हो गया और जैसे ही प्रिजर्वेशन टेक्निक्स आ गए दूध के धंधे में, कि पाश्चराइजेशन करे, दूध को 80 डिग्री तक उबाले और तुरंत 4 डिग्री पर नीचे लाए, ये पाश्चराइजेशन प्रोसेस कहलाता
है।
फिर उसमें होमोजेनाइजेशन भी आ गया कि फैट ग्लोबुल से उसको फोड़ देने का दूध के जो है वो, ताकि फैट सेपरेट नहीं होगा दूध से, पहले से फैट निकाल ले, ये भी एक और तरीका है इस प्रकार से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो दूध हम ताजा लाते थे और ज्यादा से ज्यादा एक या डेढ़ दिन तक उसका इस्तेमाल करते थे, वो अब आपके घर पहुंचते पहुंचते 3-4 दिन पुराना हो जाता है। वो वहां से किसी सेंटर में जाएगा, पाश्चराइजेशन सेंटर में जाएगा, बॉटल किया जाएगा, ये सेपरेशन वगैरह सब किया जाएगा उसमें से, और फिर वो रिटेल में आ जाएगा, और फिर उसमें से आप घर में लाके उसको फिर फ्रिज में रखेंगे।
बिल्कुल,
जितना चाहिए उतना ले लेंगे उसमें से, बाकी तो फ्रिज में ही पड़ा रहेगा। तो मेरा कहने का मंतव्य है कि पहले वाली प्रोसेस आपके हाथ में नहीं है, वो तो कभी कमर्शियल हो गया पूरा। आपके घर लाने के बाद तो कम से कम करो कि पूरा दूध उबालो, उसमें से मलई जितनी निकलती है वो निकालो और उस दूध का प्राशन करो, ये सबसे अच्छा तरीका है इस प्रकार से। लेकिन हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं, एक सुपरमार्केट में दिन हफ्ते में एक दो बार जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो एक 3-4 लीटर का कैन ला के फ्रिज में रख देंगे और हफ्ते भर तक वही दूध चला रहेगा, तो ये हमारे हिस्से में तो पर्यूषित ही होने वाला है। ये स्टेल फूड में हमें लगता नहीं है कि हम स्टेल फूड ले रहे हैं तो उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो नहीं रही उसमें,
क्योंकि हमें टेस्ट से मालूम नहीं होता कि स्टेल है।
हाँ,
पर उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज नहीं।
हाँ, हमें ऐसा लगता है कि टेस्ट में कुछ अंतर नहीं है। मैंने एक जोक सुना था, बहुत ही बढ़िया जोक है। किसी को मेहमान आए थे तो उनको एक बढ़िया डिश खिलाई, बहुत ही अच्छी चीज है, 6 महीने पहले मैंने खाई थी और इसी प्रकार का स्वाद था। बराबर है ना, आपको याद है ना 6 महीने पहले खाई थी? हाँ बराबर है, वही है।
अच्छा
तो 6 महीने मैंने बचा कर फ्रिज में रखी थी, अभी आपको गर्म करके दिए और वही स्वाद है। तो ये जोक है वास्तव में, लेकिन ये सत्य घटना है। तो लोग ऐसा समझते हैं कि रेफ्रिजरेटर में रख दिया, कुछ परिवर्तन आएगा नहीं उसमें, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर प्रिजर्व करता है उसके प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो। तो हम इसमें विश्वास नहीं करते वास्तव में। हम क्या मानते हैं कि परिणमन जो होता है, जो परिवर्तन आता रहता है चीजों में, उसके लिए दो कारण है। एक अग्नि है, उसका खुद का अग्नि है, और एक बाह्य वातावरण का अग्नि है। तो वातावरण का अग्नि को हम सीमित कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, डीप फ्रीजर में रखेंगे, तो उस वातावरण के अग्नि को हम कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन उसका जो खुद का अग्नि है वो तो काम करता ही रहेगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी, ऐसा होगा। लेकिन कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप से परिवर्तन होता रहेगा जो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज ऐसी है कि काल जैसे बीतता जाता है तो काल का एक संस्कार होता है उसके ऊपर, और फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीते जागते इंसान है, और पशु देखो किस प्रकार से जीते हैं, वो मारते हैं, हत्या करते हैं, उनका जो भक्ष्य है उसकी, और तुरंत उसको खा जाते हैं, वो ऐसा सड़ने देते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली हमें भी ताजा ही खाना है, लाइवलीनेस जो है वो ताजे अन्न में ही रहेगा, वो इस प्रकार से पुराने अन्न में नहीं होगा ऐसा। तो मैं बताता हूं कि जिन जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे दूध की एलर्जी है, तो आप फ्रेश दूध लेके आओ बिना पाश्चराइजेशन वगैरह का, और वो ट्राई करो, ये मेरा सुझाव रहता है।
उसको उबालकर मलाई निकाल,
और उससे भी अगर आपको तकलीफ होती है तो सोच सकते हैं कि ठीक है दूध की एलर्जी हो सकती है आपको, तो उसमें कुछ द्रव्य डालो, कफ हो रहा है तो थोड़ी शुंठी डालो, हल्दी डालो, इस प्रकार से करो। दस्त होते हैं तो भी शुंठी का हो सकता है, लाजा का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि मैं बहुत सारे कैंसर मरीजों को दूध के ऊपर रखता हूं, तो ये काफी सवाल बार बार आता रहता है अरे बाप रे दूध पे कैसे रहेंगे, सिर्फ दूध पियेंगे तो क्या होगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और मुझे तो दूध बिल्कुल साथ में नहीं है, लेते ही मुझे दस्त होता है, कफ होते हैं, कफ होता है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो मैं बता सुझाव देता हूं कि एक ऐसा करिए, आप देसी गाय का दूध ही लाए, ताजा दूध लाए, पाश्चराइज तो नहीं होना है वो। और फिर धारोष में अगर मिलता है तो धारोष में पी जाओ, नहीं तो ये उबाल के मलाई निकल के दूध ले लो। और फिर भी अगर आपको तकलीफ होती है तो ये ट्राई करो कि ये हल्दी डालो, सुंठी डालो वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। इसके आगे भी आपको तकलीफ होती है तो मैं मेरी दवा कुछ दे दूंगा उसके लिए, और उसके बावजूद भी होती है तो ठीक है, हम सोचेंगे कि दूध नहीं देना है अभी, दूसरा कुछ ट्राई करेंगे इस प्रकार से।
अच्छा।
लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे हैं वो इन सभी को पार कर जाते हैं और फिर दूध की तकलीफ नहीं रहती, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें गहराई में जाकर ये देखना है एक्चुअली कि एलर्जी या इस प्रकार की जो रिएक्शन आ रही है उसका मूल कारण क्या है, इस मूल द्रव्य से कुछ परेशानी हो रही है या इन प्रोसेसेस के बारे में कुछ गड़बड़ी है और उसके जरिए कुछ तकलीफें हो रही है, तो उन प्रोसेसेस को निकाल देना है ना। अगर ये चीज है तो प्रोसेसेस जो बीच वाली है वो हटा देंगे तो मूल रूप से देखेंगे, फिर उससे अगर एलर्जी है तो फिर उसके बारे में सोचना है ऐसा।
तो ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई, जो दूध से एलर्जी है जिसके बारे में अक्सर लोगों के खुद के बारे में धारणा हो जाती है कि मुझे दूध से एलर्जी है, क्योंकि उनके साथ हुआ हो, जैसे आपने बताया कि किस तरह से उस बात पर गौर करना है कि किस क्वालिटी का दूध वो ले रहे हैं, और जैसे आपने बताया कई स्टेजेस में हो सकता
है। अभी तो एक दूसरी ऐसी भी चीज है, बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों में इस प्रकार के कहा जाता है नहीं नहीं दूध की एलर्जी है, दूध देना ही नहीं है उसको, तो फिर सोया मिल्क वगैरह ऐसा कुछ शुरू करते हैं, ऐसा है। तो हमारे हिसाब में ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि पूरे पहले 6 महीने तक तो उसको दूध पर ही रहना है ऐसा है, और सबसे अहम चीज है माँ का दूध, अगर वो नहीं है तो बाहर का गाय का दूध वगैरह इस प्रकार का देते हैं, और उसके अगर एलर्जी हो जाती है इस प्रकार से तो ये सोया मिल्क वगैरह इसका वास्तव में समाधान नहीं है। तो एलर्जी कैसे दूर हो जाए इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना है। लेकिन ज्यादातर देखते हैं कि कन्वेंशनल मेडिसिन में ठीक है ये नहीं सूट हो रहा तो आप सोया मिल्क दे दो या दूसरा बादाम का मिल्क दे दो वगैरह, ये सब कुछ उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश, या फिर जो सिरिलैक वगैरह जिस प्रकार से जो फॉर्म फीड है उसके बारे में लोग बता देते हैं कि ये करो इस प्रकार से, तो ये नेचुरल नहीं है, ये सब सिंथेटिक इस प्रकार के है, यानी कि निसर्ग से हम जितना दूर जाएंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसी अवस्था में हमारे पास बहुत कम बच्चे आते हैं, क्योंकि ज्यादा पेडियाट्रिक्स में आयुर्वेद का रोल ज्यादा नहीं है, हम जब कहीं भी एलोपैथी फेल होती है उसमें कुछ होता नहीं है तभी हमारे पास आते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। तो इसके बारे में बहुत कम मरीज आते हैं कि दूध की एलर्जी है करके इस प्रकार से, लेकिन बड़े लोगों में भी इस प्रकार का कुछ पाया जाता है। तो उस समय में हम जिस प्रकार से मैंने अभी बताया तो उस प्रकार से मैं बताता रहता हूं कि ये सब कोशिश करो, और उसके बावजूद भी अगर दूध की एलर्जी रहती ही है तो हमारे एक कंसेप्ट है ओकसात में करके, उपचेते यद औचित्याद ओकसात में तदुच्यते, इस प्रकार का वो बताते हैं कि औचित्य होने से, यानी कि बार बार अगर हम उसका सेवन करेंगे तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएंगे इस प्रकार से होगा, तो वो साथ में हो जाती है, एसिमिलेट हो जाती है वो चीज। तो अगर आपको दूध की एलर्जी है मान लिया तो ठीक है, आप एक चम्मच से शुरुआत करें, ज्यादा लेवे ही नहीं, एक चम्मच देखे लेके पहले देखे कि उसकी तकलीफ हो रही है, अगर उसमें भी आपको तकलीफ लगती है तो दूसरे किसी चीज के साथ ले लें, रोटी उसमें बनाए, दूध में बनाए, एक चम्मच दूध में, पानी के बगैर दूध ही डालने का, और फिर रोटी अगर हजम होने लगती है तो उससे तकलीफ नहीं होती है, तो धीरे धीरे दूध इस प्रकार से बढ़ाते जाए। तो ये एक तरीका है कि जो अच्छी चीज है, हितकारक है हमारे लिए, लेकिन हमें सूट नहीं हो रही, तो उसको बहुत कम मात्रा से शुरुआत करके धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाना है, और फिर वो आपको साथ में हो जाएगी। जैसे ये व्यसन के बारे में बताते हैं, तंबाकू शुरू में तकलीफ देती है, लेते रहेंगे आप तो आगे तकलीफ नहीं होगी, जो रूढ़ शब्दों में जो जिसको तकलीफ कहते हैं, कैंसर हो सकता है वो अलग चीज है,
लेकिन महातकलीफ हुई।
हाँ, लेकिन शुरू में तो ऐसा लगता है बहुत मजा, बड़ा मजा आता है, क्या है, लोग खाम खा इसको कोसते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वो जिस प्रकार से उसका साथ में बना लेते हैं, उसी प्रकार से दूध जैसे जैसे जो चीजें हैं उनका साथ में हमें करवा लेना है इस प्रकार से। अभी बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं कि घी कभी चखा ही नहीं, सात्मीय असात्मीय ये चीज अलग है, लेकिन उसका स्वाद ही पसंद नहीं है, बचपन से कभी खाया ही नहीं इस प्रकार से, तो ये बड़ी अजीब चीज है। तो हम बताते हैं कि आप शुरू तो करो रोटी के ऊपर, चावल के ऊपर ऐसा लेना आरंभ करो, अगर वो भी नहीं करना है तो घी में तड़का लगाओ और फिर सब्जी दाल उसमें बनाओ, तो आपका थोड़ा थोड़ा उसका टेस्ट डेवलप होगा इस प्रकार से, लेकिन ये करना चाहिए। और जो बुरी चीजें हैं वो अगर हमें साथ में हो गई है तो उससे छुटकारा लेना चाहिए, इस प्रकार का जरूर है करना, ऐसा है थोड़ा सा।
यहाँ पे मैं आपसे एक बारे में और भी पूछना चाहूंगा एलर्जी से जुड़ी बात, कि खासकर बे एरिया में जो सीजनल एलर्जीज मान कही गई है बहुत अक्सर सुनने में आता है, खासकर जो वक्त होता है बसंत का, स्प्रिंग टाइम में जब फूल खिल रहे हैं और तो लोगों को जोर से छींके आने शुरू हुई, खांसी, नाक बहने लगी और हालत काफी खराब भी हो सकती है, तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों के लिए यही बात संचय की और दोष की आती है कि इसका कोई और भी कोई नजरिया है इसको देखने का?
यही बात संचय की आती है, यहां भी आती है इस प्रकार से। वास्तव में क्या है, हेमंत और शिशिर ऋतु जो है वो बड़े अच्छे सीजन बतलाए जाते हैं आरोग्य की दृष्टि से। शीत ऋतु जो है सबसे अच्छा सीजन,
अग्नि सबसे,
हाँ, अग्नि सबसे ज्यादा प्रखर होता है, बल आपका अच्छा होता है, और फिर उसमें कहा गया है कि आप स्निग्ध गुरु इस प्रकार का जो है खाना खावे, क्योंकि अग्नि अच्छा है आपका। फिर इस प्रकार के खाने से कफ का संचय होना आरंभ हो जाता है, और जैसे कि वसंत ऋतु में सूर्य ज्यादा तापमान वाला होता है, प्रखर किरणें होती है, ग्रीष्म में तो और भी प्रखर हो जाता है, लेकिन वसंत ऋतु में ये शुरुआत होती है इस प्रकार से, और जैसे वो बर्फ पिघलने लगता है उसी प्रकार ये कफ पिघलने लगता है, शरीर में संचित है या ये सूर्य के किरणों के द्वारा, और फिर वो विभिन्न प्रकार के रोगों को निर्माण करता है, जो खास करके इस प्रकार के एलर्जिक कंडीशंस कही जाती है, चाहे सर्दी जुकाम हो या फिर एस्मा की शिकायत हो, स्किन के प्रॉब्लम्स कुछ इस प्रकार के हो, तो ये बहुत सारी चीजें खास करके इस ऋतु में, वसंत ऋतु में आते हैं। नेत्र रोग में एक स्प्रिंग कटार नाम की दवा ये है, बीमारी है कि नेत्र जो है वो लाल हो जाते हैं, उसमें से पानी निकलता है और देखने भी तकलीफ काफी होती है, और उसमें आगे चलकर कॉर्नियल ओबेसिटी भी डेवलप होती है इस प्रकार। मैं एक बड़ा अजीब अनुभव बताऊं स्प्रिंग कटार के बारे में, मैंने शायद पिछली कहीं बताया होगा, एक 10-11 बरस का लड़का, छोटा लड़का, तो उसको स्प्रिंग कटार की शिकायत थी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया था, तो उन्होंने शुरू में एंटी एलर्जिक कुछ दवा आंख में डालने के लिए ले दी, फायदा नहीं हुआ, फिर लोकल स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया, उसका भी फायदा नहीं हुआ, तो और कॉर्नियल ओबेसिटी डेवलप होने लगी, तो उसमें सोचा कि अब सिस्टमिक स्टेरॉइड्स दे देंगे इस प्रकार से, कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसको मेरा नाम याद आ गया। तो बोले कि एक बार सिस्टमिक स्टेरॉइड शुरू करने से पहले एक बार तुम आयुर्वेद की सलाह ले लो, अगर उसमें कुछ होता है तो वही करो, मैं स्टेरॉइड देना नहीं चाहता एक्चुअली। तो मेरे पास आया तो 10-12 बरस का लड़का था, और हम हिस्ट्री ले रहे थे, मेरा एक छात्र सवाल पूछता रहा था और उसके माता पिता बाजू में बैठे थे, सुबह कितने बजे उठता है, स्कूल कितने बजे होती है, टिफिन में क्या खाता है, घर दोपहर में आने पर क्या खाता है, इस प्रकार के सवाल थे। तो मैंने देखा कि उसके माता पिता दोनों बहुत चमत्कारिक दृष्टि से देख रहे थे मुझे। तो अंत में मैंने पूछा कि आपको कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है क्या, कि आप इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं। बोले अजीब ही वो लग रहा है, क्या हुआ? देखो इसका आंख की बीमारी है और आप जो सवाल पूछते जा रहे हैं वो सभी खाने पीने के बारे में सवाल है, उठता कब है, सोता कब है वगैरह वगैरह, क्या संबंध है इसका? मैंने आज तक जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास मैं गया हूँ, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास, इस बीमारी के लिए, ये सुपर स्पेशलिटी जैसा था थोड़ा सा, तो उन्होंने सबने हाँ ठीक है स्प्रिंग कटार है ये दवा ले लो, इस प्रकार से बता दिया। किसी ने आज तक कोई पूछताछ नहीं की इसके बारे में। तो मैंने कहा बराबर है, आपको जो आश्चर्य लगा उसमें संदेह नहीं है मुझे क्यों हुआ इस प्रकार से। लेकिन ऐसा है कि नेत्र एक शरीर का अवयव है, मैंने हाँ वो तो सही है, शरीर का पोषण आहार से होता है वो भी बहुत सही है, तो शरीर का होता है तो सभी अवयवों का भी आहार सही होगा, सही बात है। अगर पोषण सही होगा तो कार्य अच्छा रहेगा शरीर का, पोषण अगर सही मात्रा में नहीं होता है, गलत होता है, तो बीमारियां होंगी, हाँ सही है। तो अगर नेत्र भी आपका एक अवयव है, शरीर का एक हिस्सा है, और उसका पोषण भी आहार से ही होता है, तो हमारे हिसाब में अगर वो गलत तरीके से होगा तो वो बीमारियां पैदा करेगा। चाहे आंख की बात हो, चाहे कर्णनाशा इस प्रकार की बात हो, चाहे त्वचा की बात हो, या चाहे रुधिर की बात हो, कोई भी हो, इस प्रकार से आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभव, ये जो भी बीमारियां शरीर जो बनता है ये आहार से ही बनता है, वी आर व्हाट वी ईट। तो जिससे हमारे शरीर में धातु बनने वाले हैं, हमारा शरीर बनने वाला है, जिससे उसको लेने के पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि ये मेरे मुंह में जाने लायक योग्य है या नहीं है, क्योंकि उससे मेरे धातु बनने वाले हैं। अब ये विचार ही नहीं रहा, हम जाएंगे बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, और कोक पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कभी सोचेंगे नहीं कि इसमें शरीर में क्या पैदा होने वाला है इसमें। तो इसी प्रकार से हमारे हिसाब में कुछ नेत्रीय चीजें हैं जो आंखों के लिए अच्छी है, कुछ ऐसी चीजें हैं वो अचक्षुष बताई गई है, आंखों के लिए अच्छी नहीं इस प्रकार के बताई गई। तो इनके एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो आंखों को बिगाड़ने वाली ही है, तो उनका अगर आप सेवन करते रहेंगे तो आंखों पर परिणाम होगा ही, और जब तक वो हम टालेंगे नहीं तब तक के परिणाम कैसे दूर होगा, सीधी सादी बात है। तो फिर उनके समझ में कितना आया मुझे मालूम नहीं लेकिन हमें तमाम चीजें उसमें से निकली कि वो जो बच्चा खा रहा था, दही खा रहा था, शिकरण के लिए कि उसको बहुत पसंद थी, दूध और केला इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खा रहा था वगैरह वगैरह, तो मैंने उसको वमन दे दिया क्योंकि कफ के कारण ही सब हो रहा था, और दवाइयां दी तो वो ठीक हो गया, उसको स्टीरॉयड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गया इस प्रकार से। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें समझ लेना चाहिए कि किस किन कारणों से ये सभी चीजें पैदा इस प्रकार की हो रही है। तो हम निकले थे कि जो भी हम खाना खाते या पीते हैं मेरे इस प्रकार से जो भी चीजें करते हैं, तो उसका एक तुरंत इफेक्ट उसमें अगर आ जाता है तो हम समझ लेते हैं कि वो हाँ इस प्रकार का खाया था और ये इस प्रकार की रिएक्शन होगी। लेकिन अगर तुरंत इफेक्ट नहीं आ रहा और हम सोचते हैं कि ठीक है मैंने खाना खा लिया, अच्छा नहीं था, फिर भी तकलीफ तो नहीं हुई है, तो ठीक है अपने आप सुधर जाएगा इस प्रकार से, तो ऐसी चीज है ही नहीं इसके बारे में। और हमने आरंभ किया वो दूध रिफ्रिजरेटर में रख के वगैरह इस प्रकार से, और स्टेल हो जाता है ये हम मान ही नहीं रहे इस प्रकार से, प्रदूषित हो जा रहा है ये हम मान नहीं रहे इस प्रकार से, और हम समझते हैं कि उसमें कुछ क्षति नहीं है। मुझे ये बड़ा आश्चर्य की बात रही मेरे लिए कि हमारे जो भारतीय है, जो भारत से यहां आकर अमेरिका में या यूके में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहां की जीवन पद्धति को उन्होंने स्वीकार कर लिया है,
उसी को उन्होंने ढाल लिया है,
तो मुझे एक अचंबा रहा। मेरी एक मरीज थी, अमेरिका वासी थी, डलस में रहती है, और जब मेरे पास आई हालत बहुत ही बेकार थी उसकी, एक्चुअली उसको था आमवा जैसी बीमारी थी, रोमेटेड आते उसका एक्चुअल निदान एलोपैथी में लंबर गर्डल स्टेनोसिस इस प्रकार का था। ये अलग ही चीज है पूरी, लेकिन हमारे हिसाब में वो पचन बिल्कुल अच्छा नहीं था उसका। उसको मैंने काफी दिन लंगन पे ही रखा, केवल मूंग का पानी पीना है, बाकी कुछ खाना पीना नहीं है इस प्रकार से। और मरियत बहुत सारे तरीके की दवाइयां चली, कांजीधारा हो गई और स्वेदन वगैरह इस प्रकार के, आलू का पुट्टी स्वेदन वगैरह ऐसे कुछ बहुत सारे प्रकार किए, काफी सुधर गई, अमेरिका में वापस आ गई। लेकिन मुझे जो ईमेल आते थे उसके बाद में, वो अभी मैं ठीक नहीं हूं, अभी ठीक नहीं हूं, इस प्रकार के ईमेल आते थे। तो मैं तंग आ चुका, क्योंकि मेरे यहां से भारत से जब निकली तो बहुत अच्छी थी, अब ऐसी क्या आफत आ गई कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ऐसे कह रहे। तो पहली बार मैं जब अमेरिका आया 4 वर्ष पहले, तो उसने भी जिक्र किया, मैंने ठीक है मैंने मान लिया कि मैं डल्लस आता हूं, आपको देखकर वापस इंडिया में आ जाऊंगा, क्योंकि उसकी कोई इंडिया में आने की गुंजाइश नहीं थी। मैं जैसे उनके घर पहुंचा तो उन्होंने पूछा आप खाना क्या खाएंगे, जो आपने बनाया है वो खाएंगे। ऐसी क्या उसमें चीज है। नहीं नहीं आप कुछ भी बताइए तो हम दे देंगे। ऐसे क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा था, ये ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या क्या है, जो चाहे खिचड़ी कढ़ी चाहिए तो है, दाल चावल चाहिए तो है, सब्जी रोटी चाहिए तो है, इतनी सारी चीजें आपने बनाई मेरे लिए, वो तो बना के रखी है 15 दिन हो गए।
अच्छा
फ्रीज में सभी उपस्थित है, जो आप चाहेंगे वो हम गम करके दे देंगे आपको। तो मैं तो अचंभित रह गया कि ये महाराष्ट्रियन है और कुछ 15 बरसों से अमेरिका में है, स्थित है इस प्रकार से, और इतने बदल गए कि 15-20 दिन का खाना फ्रिज में रख के गर्म करके खाते रहते हैं इस प्रकार से, और उसको वास्तव में उतनी तकलीफ नहीं होती है। अगर ऐसे ही खाना खाते रहेंगे तो उसको तकलीफ जरूर होने वाली है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे दिन मेरे साथ 2 किलोमीटर घूमने के लिए आए ठंड में भी इस प्रकार से। मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो लेकिन ये इस प्रकार का खाना मत खाओ, नहीं तो फिर से बीमार हो जाएगी इस प्रकार से। तो कहने का ये मतलब है कि ये कब तक शरीर सहन करता रहेगा, उसी एक सीमा रहती है। जब हम उस सीमा को पार कर जाते हैं, जैसे कि मैंने वो प्रकृति और माँ इस प्रकार का उदाहरण दिया था, वो शुरू में तो आपको बताती है, सुझाव देती है कि ये मत खाओ, अभी भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना है इस प्रकार से, लेकिन आप उसको ठुकरा कर खाना खा लेते हो तो फिर उल्टी हो जाती है, पेट दुखता है, तो तब तक रुकना चाहिए, तब तक रुकना चाहिए, तभी नहीं रुकते हैं, एंटीएमेटिक दवा ले लेते हैं और खाना खाते हैं फिर से इस प्रकार से, तो तकलीफ आपको भुगतनी ही है इस प्रकार से। और वो जब आपने तकलीफ होगी, वो दीर्घकाल चलने वाली तकलीफ होगी या फिर सडन कुछ हो गया इस प्रकार की तकलीफ होगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि फेटल भी हो सकता है, मैंने एक बड़ा अजीब किस्सा उसके बारे में सुना है, ये सत्य घटना है इस प्रकार की, कि कोई एक नौजवान 27-28 बरस का लड़का, शादी तय हो चुकी थी उसकी और अगले हफ्ते में शादी थी, उसको बुखार आ गया। तो घर वाले ने सोचा नहीं नहीं अभी एक हफ्ते में शादी है तो उसको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, तो उसको एडमिट किया अस्पताल में, कोई जरूरत नहीं थी वास्तव में, लेकिन अस्पताल में दाखिल किया। अब ऐसा है कि अस्पताल में दाखिल किया तो सिर्फ दवा से क्या करेंगे, सलाइन तो कम से कम देना है। लोगों की भी अपेक्षा रहती है कि एक बार वो सलाइन की बोतल ले ली तो फिर एनर्जी हो जाएगी शरीर में इस प्रकार से, तो सलाइन दे दिया, दवा दे दी बुखार के, बुखार तो उतर गया, फिर शाम को डिस्चार्ज करना है। तो इन्होंने भी जिक्र किया है, डॉक्टर ने भी सोचा कि ठीक है कि एक बार एक और सलाइन की बोतल दे देंगे डिस्चार्ज के पहले, तो ताकि स्फूर्ति रहेगी, ऐसे मरीज की और उससे रिश्तेदारों की भावना थी। और डॉक्टर भी बोला कि वैसे भी मुझे पैसे मिलने वाले अगर सलाइन में चढ़ाऊंगा तो, सलाइन लगाए। फिर ऐसा हुआ कि नहीं सलाइन जल्दी खत्म करके घर पे जाना है, तो फास्ट कर दिया। फास्ट करने से शिवरिंग हो गया, तो शिवरिंग हो गया तो काफी शिवरिंग रहा तो इन्होंने एंटी एलर्जिक दवा दे दी, उसकी रिएक्शन आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। और ये सत्य घटना है। तो किस चीज को लेकर हम गए और क्या हुआ, नतीजा क्या निकला इस प्रकार से, तो ये सब बेकार ही था, ये सब प्रयास ही बेकार था दोनों के तरीके से। एक तो एडमिट करने की जरूरत ही नहीं थी, एडमिशन किया तो भी डिस्चार्ज देना था, तो सलाइन देने की क्या जरूरत थी, सुबह एक बार सलाइन ले लिया, आप खोलोगे खाता पीता है, कोई सलाइन देने की जरूरत ही नहीं वास्तव में, फिर भी सलाइन दिया, दूसरी बार दिया और फास्ट किया और उसकी रिएक्शन हो गई वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें हैं इस प्रकार से। पेनिसिलिन के बारे में, पेनिसिलिन एक बहुत अद्भुत दवा शुरू में थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पेनिसिलिन का पहले इस्तेमाल हुआ तो वंडर ड्रग इस प्रकार का था और काफी इन्फेक्शन को उसमें काबू कर लिया। लेकिन पेनिसिलिन की जिसको रिएक्शन होती है वो काफी फेटल हो सकती है, रोगी मर भी सकता है, ऐसा है। अभी वो इतना उसका इस्तेमाल नहीं रहा, बाकी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आने लगे इस प्रकार से। लेकिन एलोपैथी में इस प्रकार से हो सकता है कि कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि जो फेटल हो सकते हैं, चाहे टेस्ट डोज देते हैं, कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह। जैसे आपने एक पहले बार कहा था कि शुरू में रिएक्शन नहीं हुई, बाद में रिएक्शन हुई, ऐसा भी कुछ ड्रग्स के बारे में हुआ है। हमारे आयुर्वेद में भी भल्ला तक एक अच्छी दवा है, भिलावा जो बोलते हैं, बहुत अच्छी दवा है। कफचो नसो रोगोस्ति नो विबंधोस्ति कश्चन यन्न भल्ला तकम अन्यत् शीघ्रं मेधाग्नि वर्धनम्, इस प्रकार की उसकी महति बताई गई है। तो कैंसर जैसे रोगों में, संधिवात जैसे रोगों में बहुत अच्छी काम करती है। लेकिन किनके लिए, जिनको उसकी रिएक्शन नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बाजू के कमरे में अगर भल्ला तक को कोई काट रहा है तो इसके ऊपर, शरीर के ऊपर पूरी रिएक्शन आ जाती है, संपर्क हुआ भी नहीं है उसका इस प्रकार से। तो इस प्रकार की अगर उसको भल्ला तक की एलर्जी है तो उसके बारे में तो कभी सोचना भी नहीं है भल्ला तक के बारे में। अगर आपको मालूम है कि भल्ला तक की इसका एलर्जी है, या शुरू में बहुत ही थोड़ा इस्तेमाल करके देखना है, और अगर आप निश्चिंत हो गए कि नहीं ये सहने वाला है इस चीज को, तभी उसके बारे में सोचे, नहीं तो नहीं करें। हम क्या करते हैं, ज्यादातर ऐसे द्रव्यों को टालते ही है। उतनी इमरजेंसी अगर नहीं है तो नहीं ही करना है, और फिर पूछ लेते हैं कि इस प्रकार का अगर है तो पहले से ही पूछ लेना है। सल्फा ड्रग की एलर्जी भी इसी प्रकार की होती है, जिसको रिएक्शन आ जाती है सल्फा ड्रग की, अभी तो वो कम हो गया उसका वापस इस्तेमाल कम हो गया। लेकिन जिनको इस प्रकार की तकलीफ होती है वो जानलेवा भी हो सकती है, ऐसा है। तो अभी इस प्रकार की अगर एलर्जीज है तो केसकर के ऊपर सबसे बड़े अक्षरों में लिख देते हैं कि सल्फा ड्रग, एलर्जिक टू सल्फा ड्रग, एलर्जिक टू पेनिसिलिन और वॉट एवर इट में भी आ, इस प्रकार से। और ये एक चेतावनी रहती है, जो भी डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा उसको बात मालूम होनी चाहिए कि इसमें से कोई भी ड्रग इस्तेमाल नहीं करना है। फिर भी एक अहम चीज ऐसी रहेगी कि जैसे मैंने ये कहा, उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु, इस बात को पूरा ध्यान में रखना है कि केवल जो एलर्जी जिससे हुई है, चाहे वो पोलन ग्रेन हो, चाहे धूलिकण हो, या फिर पेंट हो, नया हाउस पेंट किया गया है, या स्प्रे का इस्तेमाल कुछ किया गया, सेंट स्प्रे वगैरह इस प्रकार का है, या डिओडोरेंट्स है, तो उसके कारण एलर्जी हो गई तो वो सिर्फ टालना इतना ही आवश्यक नहीं है, वो तो टालना ही है। लेकिन जो मूल रूप से दोष संचय शरीर में बना हुआ है, वो किन कारणों से बना हुआ है उसको ढूंढ लेना जरूरी,
मूल रूप पर जाना जरूरी है।
इसमें अष्टांग संग्रह में एक वचन अच्छा है, हेतुलिंग लिंगे प्रशमने रोगाणाम उपनर्भवे, कि रोग का हेतु क्या है, लक्षण क्या है, उसका प्रशम क्या है, और उसको फिर से न होने के लिए क्या करना है। ये जो वैद्य जानता है सो राजा रहो बिशक्तमा, वो राजा के लिए लायक वैद्य है इस प्रकार से। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एलर्जी को हम देखेंगे। तो एक काफी चीज ऐसी है कि अगर दोष संचय बहुत सारा है शरीर में, तो पंचकर्म एक अहम चिकित्सा है इसके बारे में, कि एक बार वो संचय आप निकाल लेंगे तो एक्सप्रेस होने के लिए कुछ अंदर है ही नहीं, तो अगर धूलिकण का संपर्क भी हो जाता है तो एक्सप्रेस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो एलर्जी चली जाती है। बहुत सारे बरसों से एलर्जिक एस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, इस प्रकार के मरीज आते हैं, ये सभी कारण रहते हैं। फ्रिज का पानी पीते हैं, या फिर केला खाते हैं, दही खाते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और वो किसी ने देखा ही नहीं है कि इस प्रकार से कुछ चल रहा है, दूसरा कोई रीजन चल रहा है। उसको सिर्फ ये मालूम है कि अगर पोलन ग्रेन से संपर्क में आता है या रजकण के संपर्क में आता है तो इसको एलर्जी हो जाती है। ऐसे मरीजों को जब पंचकर्म करवाते हैं, वमन करवाते हैं खास करके, तो ये एलर्जी मिट जाती है, वो इनके संपर्क में आकर भी उसको तकलीफ नहीं होती है, ये देखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये उत्पादक हेतु, ये जो महत्वपूर्ण चीज है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। केवल जो व्यंजक हेतु है, एक्सप्रेसिंग फैक्टर है, उसी को पूरा महत्व दे देते हैं, वो नहीं होना है, ये सबसे अहम चीज है। और व्यवहार में तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है, स्किन डिजीज से लेकर या एलर्जिक राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है, स्प्रिंग कटर जैसी बीमारियां है, एलर्जिक अर्टिकेरिया है, तो बहुत सारे ऐसे विकार है कि जिनको एलर्जिक इस प्रकार से कहा जाता है। और ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि एंटी एलर्जिक दे दे, एंटी एलर्जिक से बात नहीं बनती है तो स्टेरॉइड दे दे इस प्रकार से, और उसके ऊपर मेंटेन करें मरीज को। हम चाहते हैं कि ये ठीक होने वाले लोग हैं, ये असाध्य बीमारियां नहीं है, साध्य है। कैंसर वगैरह ऐसी चीज हो गई तो अलग चीज है, लेकिन ये जो बीमारियां हैं ये साध्य है हमारे हिसाब में। सिर्फ उसको भली भांति देखा जाना चाहिए कि उसका मूल कारण क्या है, कहां से शुरुआत हुई है और दोष संचय कैसा है, रोकने का बल कैसा है, तो उसके अनुसार अगर उसको पंचकर्म कराएंगे, पथ्य का निर्देश अच्छी भली भांति करेंगे, वो पूरे ठीक हो जाएंगे, पूरे जन्म में आगे फिर उसको तकलीफ नहीं रहेगी अगर वो पथ्य पालता रहेगा तो। पथ्य छोड़ देगा तो होगा अगर फिर से अगर तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी पंचकर्म इसमें उसका एक बहुत अहम रोल है और पंचकर्म एक अलग विषय है। नहीं तो मैं उसके ऊपर भी एक 5 व्याख्यान दे सकता हूँ,
उसके बारे में कर्म के लिए अलग से बात करेंगे,
अलग बात कर सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल परिस्थिति ऐसी है कि एलर्जी वैसे बहुत समाज में स्प्रेड हुआ इस प्रकार का है और बहुत सारे तरीके का ये है, बीमारी है, तरीके की बीमारी है, फिर भी उसके ऊपर भली भांति काबू अच्छे ढंग से पा सकते हैं। ऐसा है, सिर्फ इसको गहराई में जाकर सोचकर जो कारण सभी है वो उसको दूर करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का।
बहुत जरूरी। तो अंत में बस हम ये कहना चाहेंगे कि एलर्जीज के टॉपिक पर के जैसे आपने कहा कि खाने पीने से, और जैसे आपने कहा कि उसका पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, उसके एक्सप्रेसिव फैक्टर्स का क्या है, वो बात ध्यान रखते हुए और किन से बातों से दोषों का संचय हो रहा है, इन सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
हाँ बराबर है। तो बेसिकली शरीर में एक प्रकार का दोष संचय होता रहता है, वो ज्यादातर खाने पीने वाले चीजों से रहता है, उसको भलीभांति देख लेना है। आयुर्वेद में उसका संबंध दोषों के जरिए स्पष्ट है, जो कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेद की खासियत है। तो उसके जरिए अगर हम उसको समझ लेते हैं भलीभांति, और फिर उसको निकालने के लिए पंचकर्म जैसे उपचार भी है, अच्छे उपचार है इस प्रकार से, तो एलर्जी मिट सकती है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। शुरू में आपको एलर्जी से दूर ही रहना है, जब तक ये दोष संचय शरीर में है तब तक तो आप धूलि का संपर्क या पराकोणन का संपर्क ये आपको टालना ही है, लेकिन ये एक बार हो जाने के बाद आप निश्चित रूप से उससे दूर रहेंगे या फिर वो बीमारी आपको छुएगी नहीं, ये इतना सही है। तो मैं चाहता हूं कि लोग इसके बारे में विचार करें खुद और अच्छे वैद्यों के पास जाए और एलर्जी से छुटकारा पाए, ये सबसे अहम चीज है।
और यही हमारी भी कामना है हमारे श्रोताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्ते।